अस्सलामुअलैकुम। आज जुमा है, फरवरी की 24 तारीख। पाकिस्तान में सर शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज़ की घड़ियों में सुबह के 9 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद, खबरों के एक बुलेटिन के साथ। आगाज़ करते हैं यूक्रेन रूस तनाज़े से, जिसको आज 1 साल मुकम्मल हो रहा है। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि जुमे को उनकी कौम रूस के खिलाफ फतहयाब होगी। उन्होंने कहा कि हमने बर्दाश्त किया, हम हारे नहीं और हम इस साल फतह हासिल करने के लिए सब कुछ करेंगे। ज़ेलेंस्की ने सोशल मीडिया पर जारी एक बयान में कहा कि यूक्रेन ने दुनिया को मुतासिर किया है, यूक्रेन ने दुनिया को मुत्तहिद कर दिया है। उन्होंने ये बयान ऐसे वक्त में दिया जब उनके पड़ोसी मुल्क के साथ जंग दूसरे साल में दाखिल हो गई है, जिसका कोई बज़ाहिर खात्मा नज़र नहीं आ रहा है। उधर ग्रुप ऑफ 7 के रहनुमाओं की मुलाकात जुम्मे को हो रही है, जिसमें रूस की जंगी कोशिशों में मदद करने वालों के खिलाफ नई पाबंदियों का ऐलान किया जाएगा। व्हाइट हाउस ने जुम्मे को कहा कि वो बैंकिंग, कानकनी और दिफाई शोबों के साथ साथ 200 से ज्यादा अफराद और इदारों को निशाना बनाने वाली नई पाबंदियां आयद कर रहा है, जिनमें रूस और यूरोप, एशिया और मशरिक वस्ता में ऐसे अफराद भी शामिल हैं जो रूस की जंग की हिमायत कर रहे हैं। व्हाइट हाउस ने जुमे को यूक्रेन के लिए $2 बिलियन की इजाफी इमदाद का ऐलान किया। खासतौर पर अमरीका बगैर पायलट के फजाई निज़ाम UAS और इलेक्ट्रॉनिक जंगी आलात के साथ साथ तोपखाने और दुरुस्त फायर करने की सलाहियतों के लिए गोला बारूद फराहम कर रहा है, जो रूसी जारियत को पसपा करने के लिए यूक्रेन की सलाहियत को मजबूत करेगा। व्हाइट हाउस ने एक बयान में बताया कि अक़वामे मुत्तहिदा ने जुमेरात को एक करारदाद मंजूर की, जिसमें यूक्रेन से रूसी अफवाज के फौरी और गैर मशरूत इनखिला का मुतालबा किया गया है। इसी दौरान चीन ने जुमे को रूस और यूक्रेन के दरमियान जंगबंदी और अमन मुज़ाकरात शुरू करने का मुतालबा किया। ये 12 निकाती उस तजवीज़ का हिस्सा था, जिसमें रूस के खिलाफ मगरबी पाबंदियों के खात्मे पर जोर दिया गया है। इसके अलावा शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों को रोकने, जौहरी तनसीबात की हिफाजत को यकीनी बनाने और इंसानी इमदाद की तरसील के लिए राहदारी कायम करने के लिए इकदाम तजवीज़ किए गए हैं। चीन ने तनाज़े में गैर जानबदार रहने की कोशिश की है, लेकिन यूक्रेन पर रूस के हमले पर तनकीद करने से इनकार कर दिया है। ये सिफारती इकदाम ऐसे वक्त में किए जा रहे हैं जब मशरक़ी यूक्रेन में लड़ाई जारी है। यूक्रेन ने जुमेरात को कहा कि उसने मशरक़ी और जनूबी यूक्रेन में लड़ाई की फ्रंट लाइन पर रूसी पेशकदमी की कोशिशों को पसपा कर दिया है, जिससे मॉस्को के यूक्रेन पर हमले की पहली बरसी से एक दिन कबल जंग बेनतीजा साबित हो गई है। रूस यूक्रेन के तकरीबन 5वें हिस्से पर काबिज है। ये रकबा उससे कहीं कम है जिसकी पेशगोई 1 साल कबल यूक्रेन के मशरकी हिस्से में रूसी टैंकों के दाखिल होते वक्त फौजी तजिया कारों ने की थी। ताज़ा तरीन लड़ाई में मॉस्को की अफवाज ने पेशकदमी करते हुए बाखमूत को घेरे में लेने की कोशिश की। यूक्रेन के फौजी तर्जमान ब्रिगेडियर जनरल ओलेक्सी ग्रोमोफ ने कहा कि मॉस्को अपनी अफरादी कुव्वत को कीव की अफवाज को थकाने और कमजोर करने के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि दुश्मन बड़े पैमाने पर नुकसानात उठाने के बावजूद बाखमूत को मुहासरे में लेने की कोशिशें तर्क नहीं कर रहा। अक़वामे मुत्तहिदा की जनरल असेंबली ने जुमेरात को एक करारदाद की भारी अक्सरियत से हिमायत की, जिसमें यूक्रेन में अक़वामे मुत्तहिदा के चार्टर के उसूलों के मुताबिक जल्द अज जल्द एक जामे, मुनसिफाना और देरपा अमन का मुतालबा किया गया। यूक्रेन के पेशकर्दा मतन की हिमायत के हक में 141, मुखालिफत में 7 वोट आए, जबकि 32 गैर हाजिर रहे। करारदाद में अमन की अहमियत पर जोर दिया गया था और उसने असम्बली के इस मुतालबे का भी ये अदा किया कि रूस फौरी तौर पर, मुकम्मल तौर पर और गैर मशरू तौर पर अपने तमाम फौजी दस्तों को यूक्रेन की सरजमीन से बैनुल-अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा अपनी सरहदों के अंदर वापस बुला ले और दुश्मनी खत्म करें। اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا خصوصی ہنگامی اجلاس جو بدھ کو شروع ہوا اور ووٹنگ کے ساتھ جمعرات تک جاری رہا, روس کے حملے کا ایک سال مکمل ہونے پر بلایا گیا تھا. یوکرین کے وزیر خارجہ دیمیترو کولیبا نے عالمی برادری سے اپنے ملک کے ساتھ کھڑے رہنے کی اپیل کی. کولیبا نے ووٹنگ کے بعد صحافیوں کو بتایا کہ آج کا ووٹ ایک اور ثبوت ہے کہ یہ صرف مغرب ہی نہیں جو یوکرین کی حمایت کرتا ہے, اس کی حمایت بہت وسیع ہے اور یہ مزید مضبوط اور مستحکم ہوتی رہے گی. اس بحث میں روس سمیت 75 ممالک نے حصہ لیا. روسی سفیر ویزلی نیبینزیا نے ممالک پر زور دیا کہ وہ قرارداد کے مسودے کے خلاف ووٹ دیں. ان کا کہنا تھا کہ یہ حقیقت سے الگ ہے. ماسکو کے اتحادی بیلاروس نے متن میں دو ترامیم کی تجویز پیش کی, ایک میں یوکرین پر مکمل حملے اور روسی فیڈریشن کی طرف سے جارحیت کے الفاظ کو چھوڑ کر, اور دوسری میں ریاستوں سے تنازع والے علاقے میں ہتھیار بھیجنے سے باز رہنے کا مطالبہ کیا گیا ہے, لیکن انہیں اسمبلی نے یکسر مسترد کر دیا. نیبینزیا نے اصرار کیا کہ ماسکو امن کی راہ میں رکاوٹ نہیں ہے. یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کے سربراہ جوزف بوریل نے کہا کہ روس نے پورا ہفتہ اقوام متحدہ کی توجہ ہٹانے اور اس میں خلل ڈالنے کی کوشش کی ہے. اور آئیے اب پاکستان, افغانستان اور دنیا بھر سے خبریں پیش کرتے ہیں. پاکستانی حکام آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے کو کامیاب بنانے کی توقع کر رہے ہیں. پاکستان کا مرکزی بینک ملک میں شرع سود میں مزید 2% اضافہ کر سکتا ہے, جو پہلے ہی ملک کی تاریخ کی بلند سطح یعنی 17% پر موجود ہے. متعدد تجزیہ کاروں کے مطابق پالیسی ریٹ یعنی شرح سود میں اضافے کے ذریعے ملک میں بڑھتی ہوئی افراط زر کو کنٹرول کرنا مشکل نظر آتا ہے. ان کا اصرار ہے کہ پاکستان کی بڑی حد تک غیر دستاویزی معیشت کا ڈھانچہ ظاہر کرتا ہے کہ 27% سے زیادہ کی موجودہ افراط زر طلب نہیں بلکہ رصد میں رکاوٹوں کا نتیجہ ہے, جس کی وجہ سے اشیاء مہنگی ہو رہی ہیں اور اس مہنگائی کو شرح سود بڑھا کر زیادہ کم نہیں کیا جا سکتا. دوسری جانب اسٹاک مارکیٹ میں دوسرے روز بھی مندی کا رجحان نظر آیا, اور کاروباری ہفتے کے آخری روز بھی مارکیٹ میں 130 پوائنٹس کی کمی دیکھی گئی, کیونکہ سرمایہ کار اس بات سے واقف ہیں کہ اسٹیٹ بینک آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے کو حتمی شکل دینے سے پہلے ایک یا دو دن میں پالیسی ریٹ میں بڑا اضافہ کر سکتا ہے. پنجاب اور خیبر پختونخوا میں انتخابات سے متعلق سپریم کورٹ کے از خود نوٹس کی سماعت کے دوران مسلم لیگ نون, جمعیت علماء اسلام فے اور پاکستان بار کونسل نے بینچ میں شامل 2 ججز پر اعتراض اٹھا دیے ہیں. عدالت میں پیش کردہ درخواست میں تینوں جماعتوں کا کہنا ہے کہ انتخابات کے معاملے پر جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کی رائے پہلے ہی سامنے آ گئی ہے. جسٹس جمال مندوخیل کے نوٹ کے مطابق انصاف کے تقاضوں اور فیئر ٹرائل کے لیے 2 ججز کا بینچ سے الگ ہونا ضروری ہے. جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی نون لیگ, پی 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 اور جے یو آئی کا کوئی کیس نہ سنیں. سماعت کے دوران بینچ کے سربراہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے ایک موقع پر کہا کہ عام طور پر شہری انصاف کے لیے عدالت میں آتے ہیں, لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ اس بار آئین نے دروازہ کھٹکھٹایا ہے. جے یو آئی کے وکیل اور سینیٹر کامران مرتضیٰ نے سماعت کے بعد وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اس کیس میں اگرچہ جسٹس اطہر من اللہ نے فل کورٹ بنانے کی بات کی ہے, تاہم مجھے ایسا ہوتا نظر نہیں آ رہا. عدلیہ کی موجودہ صورتحال ایک مشکل صورتحال ہے اور اس میں ججز کو خود سے ماحول کو بہتر بنانا ہوگا. افغانستان کے ساتھ مصروف ترین سرحدی گزرگاہ تورخم کو پاکستانی حکام نے لگ بھگ 6 روز کی بندش کے بعد پیدل آنے جانے والوں کے لیے جمعے کے سپہر کھولنے کا اعلان کر دیا, تاہم دو طرفہ تجارت اور دیگر معاشی سرگرمیوں کے لیے سرحدی گزرگاہ بدستور بند ہے. تورخم میں سرکاری عہدیداروں نے بتایا ہے کہ سرحدی گزرگاہ پاکستان میں پھنسے ہوئے یا واپس جانے والے افغان باشندوں اور افغانستان میں رکے ہوئے یا افغانستان سے پاکستان واپس آنے والوں کے لیے کھول دیا گیا ہے. اس فیصلے کے تحت نہ تو کسی پاکستانی باشندے کو افغانستان और न किसी पाकिस्तानी बाशिंदों को तोरखम के रास्ते अफगानिस्तान दाखिल होने की इजाज़त होगी। अफगानिस्तान में बरसर इख्तदार तालिबान अहदेदारों ने इतवार के रोज़ पाकिस्तानी सिक्योरिटी अहलकारों की अफगान बाशिंदों के साथ नफरत आमेज रवैयों के इल्ज़ाम लगाकर सरहदी गुजरगाह को हर किस्म की आमदरफ्त और दोतरफा तजारत के लिए बंद कर दिया था। बुध के रोज़ पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सरबराही में एक आला सतही वफ्द के दौरे काबुल और रहनुमाओं के साथ मुज़ाकरात के बाद अफगान हुकाम ने तोरखम को जुमेरात के सुबह खोलने का ऐलान किया था, मगर पाकिस्तानी हुकाम ऐलानात के बावजूद ऐसा न कर सके। तजियाकारों का मौक़िफ़ है कि बुध के रोज़ होने वाले मुज़ाकरात में पाकिस्तानी हुकाम अफगानिस्तान में रूपोश अस्करीत पसंदों के खिलाफ कार्रवाई करने पर तालिबान की जानिब से कोई मुस्बत जवाब न मिलने पर मायूस दिखाई दे रहे हैं। तालिबान हुकूमत की वजारत सनत व तजारत के एक अहदेदार का कहना है कि रूस, ईरान और पाकिस्तान के ताजरों के कंसोर्शियम के साथ एक माहदे पर दस्तखत किए जाएंगे जो $1 बिलियन की इब्तदाई सरमायाकारी से बुनियादी ढांचे के 4 मनसूबों की तामीर से मुतालिक होंगे। वजारत के तर्जुमान ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया कि 14 अफगान सरमायाकारों का एक ग्रुप भी इन 3 ममालिक के ताजरों में शामिल है। तालिबान के कायम मकाम वजीर बराए सनत व तजारत नूरुद्दीन अजीजी ने रॉयटर्स को बताया कि बिजली और कानकनी के मनसूबों के अलावा कंसोर्शियम सालानांग में एक दूसरी सुरंग के इम्कान का जायजा लेगा जो अफगानिस्तान के शिमाल को मुल्क के दूसरे हिस्सों से मिलाती है। पंजशेर से काबुल तक पानी की मुंतकली और काबुल हेरात हाईवे की तामीर नौ भी इन मनसूबों में शामिल है। इंसानी हकूक की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा के खसूसी नुमाइंदे रिचर्ड बेनेट ने एक ट्वीट में तालिबान पर जोर दिया है कि वो ख़वातीन के हकूक के कारकुन नरगिस सादात और इंसानी हकूक के लिए कोशां दूसरे अफगान कारकुनों को रिहा करते हैं। उन्होंने ट्वीट में कहा कि वो तालिबान हुकाम की जानिब से जबरी हिरासत में लिए गए सिविल कारकुनों नरगिस सादात, जकरिया ओसोली, इब्राहिम मशाल और दीगर की फौरी गैर मशरूत रिहाई के लिए अपनी अपील को दोहराते हैं और उनकी हिफाजत और बहबूद की यकीन दहानी की दरख्वास्त करते हैं। अमरीकी महकमा दिफा ने ऐलान किया है कि क्यूबा में कायम हिरासती मरकज ग्वांटानामो बे में 20 बरस तक कैद रहने के बाद 2 पाकिस्तानी भाइयों को वापस उनके मुल्क मुंतकिल किया जा रहा है। अब्दुल रब्बानी और मोहम्मद रब्बानी नामी इन दोनों भाइयों को सन 2002 में कराची से हिरासत में लिया गया था, जिन्हें बाद अज़ां अफगानिस्तान में अमरीकी हुकाम के हवाले कर दिया गया था, जिसके बाद सन 2004 में उन्हें ग्वांटानामो बे मुंतकिल किया गया। दोनों भाइयों पर 11 सितंबर सन 2001 के हमले के मुबैना मास्टरमाइंड खालिद शेख मोहम्मद के लिए काम करने और पाकिस्तान में अलकायदा के मुश्तबा दहशतगर्दों को महफूज ठिकाने फराहम करने का इल्ज़ाम था। तहम 2 दहाइयों के दौरान उन पर फर्द जुर्म आयद नहीं की गई थी। ईरान ने अपने सिविलियन जौहरी प्रोग्राम के तहत यूरेनियम की 84% खालिस अफसूदगी की रिपोर्ट्स को मुस्तरद कर दिया है। ईरानी सिविलियन जौहरी प्रोग्राम के तर्जुमान बहरूस कमालवंदी का कहना है कि ईरान सिर्फ 60% खालिस यूरेनियम तैयार करने की सलाहियत रखता है। हाल ही में नशियाती इदारे ब्लूम्सबर्ग ने जौहरी इंस्पेक्टर्स के हवाले से अपनी एक रिपोर्ट में कहा था कि ईरान 84% खालिस यूरेनियम अफजूदा करने की सलाहियत पैदा कर चुका है। जौहरी तवानाई की आलमी एजेंसी IAEA ने इस रिपोर्ट की तरदीद नहीं की थी। ईरान ने यूरेनियम अफजूदगी से मुतालिक इस रिपोर्ट को एक साजिश करार दिया है। तुर्की की फोर्सेज ने दावा किया है कि शिमाली शाम में एक ऑपरेशन के दौरान इस्तांबुल के इस्तिकलाल एवेन्यू धमाके का मास्टरमाइंड मारा गया है। तुर्की के सरकारी मीडिया के मुताबिक इंटेलिजेंस अहलकारों ने शिमाली शाम के शहर कामशली में एक ऑपरेशन किया। इस दौरान मुबैना मास्टरमाइंड हलील मेंसी हलाक हो गया। गुज़श्ता बरस 13 नवंबर को इस्तांबुल के मशहूर सियाहती मकाम इस्तिकलाल एवेन्यू पर एक बम धमाके में 2 बच्चों समेत 6 अफराद हलाक हो गए थे। वाकई में 80 अफराद जख्मी भी हुए थे। तुर्की के हुकाम ने इस हमले का इल्ज़ाम कलदम तुर्किस्तान वर्कर्स पार्टी समेत شامی کردش گروہوں پر عائد کیا تھا، تاہم کردش عسکریت پسندوں نے اس کی تردید کی تھی۔ روس نے 3 خلا نوردوں کی عالمی اسپیس اسٹیشن سے بحفاظت واپسی کے لیے اسپیس کرافٹ روانہ کر دیا ہے۔ ان خلا نوردوں میں 2 روسیوں کے ساتھ امریکی خلائی ادارے ناسا کے 1 آسٹرونوٹ بھی شامل ہیں۔ گزشتہ برس دسمبر میں ان خلا نوردوں کے اسپیس کرافٹ سے چھوٹے چھوٹے شہابیے ٹکرا گئے تھے، جس کی وجہ سے اس میں تکنیکی خرابی پیدا ہو گئی تھی۔ اس خرابی کے بعد یہ اسپیس کرافٹ عالمی خلائی اسٹیشن پر پارک کر دیا گیا تھا۔ جمعے کو روس نے ان خلا نوردوں کو واپس لانے کے لیے قازقستان سے خالی اسپیس ایئر کرافٹ خلا میں روانہ کیا، جو اتوار تک عالمی خلائی اسٹیشن تک پہنچ جائے گا۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بےحد ممنون ہیں۔ اپنی ان کاوشوں کو جاری رکھیے گا۔ نیوز ایڈیٹر بہجت جیلانی کے ساتھ خالد حمید کو آپ اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔